भगवान नृसिंहदेव की जय। जिस क्षण की हम प्रतीक्षा लगभग 57 से कर रहे थे, वो क्षण अब दूर नहीं है। दिन के या रात के कब भगवान प्रकट हुए होंगे? संध्या काली तभी तो रात हो गई। न तो रात हो, न तो दिन हो, न तो बाहर न तो अंदर, ऐसी कई सारी शर्तें जो थी। एक दृष्टि से भगवान इस रात और दिन और इस संसार के समय के परे भी है। जिस समय भगवान प्रकट होना चाहेंगे वही सही समय है, सही बेला है। प्रह्लाद महाराज की जय। प्रह्लाद जय। प्रह्लाद प्रह्लाद अल्लाद दायिने। भगवान प्रकट होंगे किस लिए? प्रह्लाद अल्लाद दायिने। प्रह्लाद को अल्लाद नाम से ही परिचय होता है। प्रह्लाद जो सब समय अल्लाद का अनुभव करता है, आनंद में जो मग्न रहता है, ऐसे प्रह्लाद को और ऊपर से और अल्लाद और आनंद देने हेतु भगवान प्रकट हुए। तो वो प्रह्लाद महाराज, वो भक्त प्रह्लाद, भक्तराज प्रह्लाद महाराज की। भगवान विघ्न विनाशक है और भक्ति विघ्न विनाशक है। भक्ति में कोई बाधा डालता है, नरसिंह भगवान उसका विनाश करते हैं। जब कई पर भक्ति में कोई बाधा डाल रहा है, नरसिंह भगवान प्रकट होते हैं। एक माता हॉलैंड में ग्रंथ वितरण कर रही थी, हमारी बुक डिस्ट्रीब्यूटर, तो कोई शैतान परेशान कर रहा था। तो उस बुक डिस्ट्रीब्यूटर माता जी ने फिर नरसिंह भगवान की प्रार्थना करना प्रारंभ किया। नरसिंह देव। जब जोर जोर से पुकारने लगी तो शैतान चला गया। ऐसा एक पत्र मुझे, एक मेरी शिष्या है हॉलैंड में, उसने लिखा था, मुझे स्मरण आया अभी। तो हुआ लॉस एंजलिस में श्रील प्रभुपाद इस हरे कृष्ण आंदोलन में नरसिंह भगवान की आराधना हम शिष्यों को, उनके अनुयायियों को सिखाए। प्रचार प्रसार में कई सारी बाधाएं सर्वत्र। तद्दीनात् कलिरायातः। जिस दिन भगवान लौटे अपने धाम, क्षाम त्यक्त्वा स्वपदम गतः। भगवान थे, श्री कृष्ण थे, 125 वर्ष इस धरातल पर, फिर भगवान लौटे। स्वपदम गतः तद्दीनात्, उस दिन से आ गया कौन? तद्दीनात् कलिरायातः। कली आ गया। और कैसा है कली? सर्वसाधन बाधकः। साधकों के साधना में बाधा डालने वाला ये बाधक कलयुग है। तो प्रभुपाद देख रहे थे कैसे उनके शिष्यों के साधना में बाधा, कली के कई प्रभाव, कई रूप बाधा डाल रहे हैं। तो भगवान नरसिंह देव की आराधना प्रार्थना ఇతవ కర కమల వరే నఖం అద్భుత శృంగం ఈ వశదస్ అవతార్ స్తుతి జో కౌన్ లిఖే జయ జయదేవ గోస్వామి ఉన్కీ రచనా హై తో ఈ ప్రార్థనా ప్రభుపాద్ హమ్ లోగోన్ కో సిఖాయే తో హర్ రోజ్ హమ్ లోగ్ ప్రార్థనా కర్తే హై దిన్ కే ప్రారంభ్ మే అభీ అభీ హమ్ గా భీ రహే థే ఉస్ ప్రార్థనా కో వో ప్రార్థనా సిఖాయే ఔర్ फिर कई सारे नरसिंह देव भी प्रकट हुए जीयड नरसिंह क्षेत्र वहां बन गया जर्मनी में जर्मनी को भक्तों ने वहां की जो बाधाएं कष्ट उनको देख के भक्तों ने उस देश को नाम दिया दैत्य स्थान जर्मनी कैसी है दैत्य स्थान दैत्य स्थान में नरसिंह भगवान प्रकट हुए उनके विग्रह की स्थापना हुई और कई सारे नरसिंह भगवान प्रकट होने लगे उनके विग्रह विश्व भर में मायापुर में प्रकट हुए नरसिंहदेव भगवान और नरसिंहदेव भगवान की आराधना नरसिंह प्रसादतः श्रीधर श्रीधर स्वामी नाम के महान आचार्य हुए उनके आराध्य देवी नरसिंह देव बड़े जय नरसिंह देव आज उनके प्राकट्य की लीला हम श्रवण और स्मरण करने जा रहे हैं लीला के रूप में भगवान प्रकट होंगे और हम कहते आए हैं लीला ही क्या है लीला ही भगवान है ये मंत्र आप सीख सकते हो छोटा मंत्र है लीला ही क्या है भगवान की लीला ही भगवान है लीला प्रकट हुई लीला का श्रवण कीर्तन किया ध्यान से श्रवण किया फिर चिंतन मनन किया तो भगवान का स्मरण करते रहेंगे तो भगवान हमारे कहां रहेंगे भगवान का स्मरण करेंगे तो भगवान कहां रहेंगे मैं पहली बार ऐसा सोच रहा हूं पहली बार मैं ऐसे सोच रहा हूं कहां रहेंगे भगवान हृदय में रहेंगे या जो स्मरण करता है उसके साथ रहेंगे स्मरण अगर किया भगवान का तो भगवान दूर कैसे रह सकते हैं जो भी स्मरण करता है हे कृष्ण हे गोविंद किसने कहा कईयों ने कहा होगा और द्रौपदी ने भी जब कहा द्रौपदी ने जब पुकारा तो स्मरण किया तो भगवान प्रकट हुए और प्रह्लाद महाराज जो भक्त है किस लिए प्रसिद्ध है कौन से भक्ति के लिए प्रसिद्ध है प्रह्लाद महाराज यस स्मरण भक्ति के लिए उन्होंने ही जो कहा नवविधा भक्ति नौ प्रकार की भक्ति श्रवणम कीर्तनम विष्णुः स्मरणम और पाद सेवनम फिर अर्चनम इस प्रकार नौ विधा भक्ति तो ये स्मरण हर एक भक्ति का एक एक भक्त भी विशेष भक्त का स्मरण होता है एक भक्ति श्रवण भक्ति किसने की राजा परीक्षित ने की कीर्तन भक्ति किसने की सुखदेव गोस्वामी ने की स्मरण भक्ति किसने की प्रहलाद महाराज ने की आत्मनिवेदन किसने किया बलि महाराज ने इस प्रकार एक एक भक्ति के नाम के साथ एक विशेष भक्त का नाम जुड़ा हुआ है और स्मरण भक्ति के साथ नाम जुड़ा हुआ है प्रह्लाद महाराज का। भगवान का स्मरण किया, भगवान प्रकट हुए। तो भगवान को पास रखने का, ये हम भगवान के पास रहना चाहते हैं तो बस स्मरण करो, लेकिन सीधे स्मरण नहीं कर सकते। स्मरण के पहले क्या करना होता है, और दो बातें करने के उपरांत फिर स्मरण होता है। वो दो बातें कौन सी है? वन कौन सा? श्रवण है। टू कीर्तन, कीर्तनम। और किसका श्रवण कीर्तन? श्रवणम कीर्तनम विष्णुहो, विष्णु का, विष्णुहो कहा है। श्रवणम कीर्तनम विष्णुहो स्मरणम। श्रवण कीर्तन विष्णु का किया है तो स्मरण भी विष्णु का होगा। जिसका हम श्रवण कीर्तन करेंगे, अमिताभ बच्चन का अगर श्रवण किया, अनफॉर्चुनेटली ऐसे हम लोग करते ही रहते हैं, माफ कीजिए उनको, वो भी भले है, उनका भी भला। लेकिन प्रातः स्मरणीय कौन है? प्रातः स्मरणीय भगवान है। ध्यायं स्तुवं तस्य यस्य स्त्रिसंध्यं वंदे गुरो श्री चरणारविंदम्। प्रातः स्मरणीय, मध्यान्ह स्मरणीय, संध्या काल स्मरणीय, त्रिसंध्यम आचार्यगण उनका स्मरण, भगवान और भगवान के भक्त सदैव स्मरणीय है। तो फिर औरों के स्मरण के लिए स्थान कहां है? और आवश्यकता भी नहीं है। तो तस्माद् भवद्भिः कर्तव्यं कर्मणा त्रिगुणात्मनाम् बीज निर्हरणं योगः प्रवाहो परमो धियः। सातवें अध्याय में जहां प्रह्लाद महाराज अपने मित्रों को सुना रहे हैं, उन्होंने जो उपदेश सुना, नारदात् देव दर्शनात्, नारद मुनि से उन्होंने उपदेश सुना। देवता भी जिनके दर्शन के लिए तरसते हैं, देव दर्शन, देवर्षि, देवताओं में ऋषि जो नारद मुनि है, उनसे उन्होंने जो उपदेश सुना वही उपदेश एज इट इज यथारूप अपने मित्रों को सुना रहे हैं। और इस कथा के माध्यम से, भागवत के माध्यम से वही उपदेश हम तक पहुंच रहा है। कितने भाग्यवान हम हैं, हम नारद मुनि को सुन रहे हैं, यहां पर प्रह्लाद महाराज को सुनने का भाग्य हमें प्राप्त है यहां पर। और प्रह्लाद महाराज ने जब उपदेश सुना तो वे गर्भ में थे, मां सुन रही थी और गर्भ में प्रह्लाद महाराज सुन रहे थे। वैसे गर्भवती स्त्री जो भी कार्य करती है वो दोनों के लिए, अपने लिए और अपने गर्भ में जो बालक उसके लिए, वो भी प्रभावित होता है। भोजन करती है तो वही भोजन बालक भी करता है, जो पढ़ेगी सुनेगी उसे बालक प्रभावित होता है। इसलिए सावधान, सावधानी से वो समय सावधानी से बिताना चाहिए। भगवान का प्रसाद ग्रहण करना चाहिए, नहीं तो फिर आपने बालक को वेजिटेरियन रहने का पर्याय भी नहीं दिया। He has no choice। जन्म लेने के बाद शायद आप उसको पूछ के उसके पसंद के अनुसार, पूछना क्या होता है, ये तो बकवास है, पूछने कोई आवश्यकता नहीं होती। एक ही भोजन तो एक ही है, वो कौन सा है, वेजिटेरियन कहते हैं। फिर दूसरा क्या हो गया, उल्टा नॉन, नॉन मतलब नहीं, नॉन वेजिटेरियन, नॉन मूल भोजन तो मनुष्यों का वैसे शाकाहारी भोजन है, सात्विक आहार, ऐसा ही ग्रहण करना चाहिए। और भाषण देने की मुझे आवश्यकता भी नहीं होनी चाहिए, लेकिन क्या करें क्या। तो हुआ तो जो जो माँ खाती है, जो पढ़ती है, जो सुनती है, उसे वो सारे संस्कार बालक के ऊपर भी, ये इस बात को नोट कर सकती है माताएं। तो प्रह्लाद महाराज भी लाभान्वित हुए उस उपदेश से। कर्तव्यम, करने करने के कार्य, कर्मणाम त्रिगुणात्मनाम, तीन गुणों से प्रभावित हम होते हैं, सत्वगुण रजगुण तमगुण, और इन कर्मों के बीज हमारे हृदय प्रांगण में बोए जाते हैं, और वो बीज फिर प्रतीक्षा करते हैं, एक दिन वो बीज अंकुरित होंगे, बीज से अंकुर अंकुरित होंगे, इसको लोग फल, फिर धीरे धीरे उस अंकुर का पौधा और पौधे से फल मिलेगा। और जिस प्रकार का हमने कार्य किया है, वेल आप कहोगे संसार में दो प्रकार के कार्य, वैसे तीन प्रकार है, लेकिन तीन गुणों के अंतर्गत या तो व्यक्ति पाप कर्म करता है या पुण्य कर्म करता है, और दोनों भी कर्मों के बीज बोए जाते हैं और उसके फल इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, समय आता है तो उसको उसके फल चखने होते हैं। तो अच्छा है प्रह्लाद महाराज यहां कह रहे हैं, तो जो बीज है जिसको हमने बोए हैं, अलग अलग कर्मों के साथ हमने बीज बोए, तो वो जो बीज अवस्था में वे है उनको जलाना चाहिए, उसको आग लगानी चाहिए। ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात कुरुते तथा, भगवान श्री कृष्ण भी ऐसा ही उपदेश दिए भगवत गीता में। ज्ञान की ज्योति से ऐसे कर्म के बीज जो भविष्य में हमें आने वाले दिनों में, आने वाले कुछ महीनों में, वर्षों में, या हो सकता है अगले जीवन में, वो हमारे लिए आपत्ति बन सकते हैं। इसीलिए जब बीज अवस्था में है वहीं पर उसकी राख कर दो। भागवत कथा में जाओ, भागवत पढ़ो, गीता का अध्ययन करो, सत्संग करो, हरि नाम का उच्चारण करो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसकी जो ज्योति है, हरि नाम का जो प्रखर प्रकाश है, ज्योति है, ज्ञान की ज्योति है, और यही तो, ये तो भगवान हो गए, ये कृष्ण ग्रह हुआ, तो इस कृष्ण ग्रह कृष्ण सूर्य सम, उसकी जो प्रखर ज्योति है उसे सारे बीज जल जाएंगे, तब हम मुक्त हो गए। तो वैसे मनुष्यों को पाप तो करना नहीं चाहिए और पुण्य भी नहीं करना चाहिए। anyway, मुझे फिर लंबा भाषण शुरू हो जाता है, फिर आपको समझाना पड़ता है, क्योंकि आपको आश्चर्य लगा पुण्य नहीं करना चाहिए, जीवन में पहली बार सुन रहे हैं, पुण्य भी नहीं करना चाहिए। पुण्य करने से व्यक्ति स्वर्ग में जाता है, ऐसे कोई जो कोई सात्विक कर्म है उसे स्वर्ग में जाता है व्यक्ति, पाप करने से कहां जाता है, नरक में जाता है। लेकिन हमारा कर्तव्य ये है, हमें न तो नरक में जाना चाहिए और स्वर्ग भी नहीं जाना चाहिए। तुकारा महाराज जहां गए वही जाना चाहिए। आप मिलना चाहोगे तुकारा महाराज को तो आप स्वर्ग जाओगे तो मिलेंगे वहां पर, बिल्कुल नहीं। इसीलिए आपको वहां से भी आगे बढ़ना चाहिए, भगवान की धाम। स्वर्ग भगवान का धाम नहीं है, वैकुंठ भगवान का धाम है। तो फिर तीसरा कर्म हुआ वो भक्ति कर्म है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम इत्यादि इत्यादि। ये जो नवविधा भक्ति है ये भक्ति कर्म, भक्ति कर्म करने के लिए प्रहलाद महाराज यहाँ उपदेश दे रहे हैं, जो उपदेश उन्होंने नारद मुनि से सुना हुआ है। भक्ति कर्म करो, और भक्ति ही सबसे ऊंचा कर्म है, श्रेष्ठ पुण्य है। श्रणवतः स्वकतः कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन, ये पुण्य है, सबसे बड़ा पुण्य। कोई साधारण पुण्य में हो सकता है, अस्पताल खोला तो पुण्य हुआ, स्वर्ग गया, स्कूल खोला और ये किया वो किया कुछ, ये पुण्य है, इसे स्वर्ग में जा सकता है व्यक्ति, पुण्य। लेकिन दूसरा एक पुण्य है, हरी मुखे मना पुण्याची गणना पूर्ण करी, ये पुण्य अलग है। ये हरी मुखे मना जब शुरू होता है, हरि का जब नाम लेते हैं तो दूसरे प्रकार का पुण्य, अलौकिक दिव्य पुण्य, जो गुणातीत है, तीन गुणों से परे है। तीन गुण मतलब तीन प्रकार की डोरिया है, सत्व गुण की डोरी, रज गुण की डोरी, तमगुण की डोरी, तोड़ दो ये डोरिया। प्रहलाद महाराज त्रिगुणात्मनाम कर्मणाम बीज निर्हरणम योगः प्रवाहो परमो धिया। फिर इस संसार का जो भव प्रवाह है, भव प्रवाह, हम लोग प्रवाहित हो रहे हैं इस भव सागर में, प्रवाहित होते हुए बहते हुए जा रहे हैं। तो ये हमारा बहना जो बहते हैं हम लोग, इससे मुक्त होंगे हम। तत्र उपाय सहस्रानामयम् भगवतोदितः यदीश्वरे भगवती यथा यैरञ्जसारतिः। प्रहलाद महाराज आगे समझा रहे हैं, हमें ऐसा कार्य करना चाहिए, कई सारे कार्य संभव है किंतु हमें ऐसा कार्य करना चाहिए ताकि यदि जिससे ईश्वरे मतलब परमेश्वरे, कौन है परमेश्वर, ईश्वरः परमः कृष्ण, कृष्ण परमेश्वर है या नरसिंहदेव परमेश्वर है, एक दिन आपको बता चुके हैं। ईश्वर तो कई है, ईश्वर 33 करोड़ ईश्वर है और उनके ऊपर परमेश्वर है। मयाध्यक्षेन प्रकृति सूयते सचराचर, कहने का जिनको अधिकार है, ईश्वरों के ईश्वर है, देवों के देव आदि देव है, श्री कृष्ण वासुदेव हरि हरि, तो ऐसे ईश्वरे भगवती, तो ऐसा कार्य करना चाहिए। कौन सा कार्य तो पता है, 9 प्रकार के कार्य, 9 विधा भक्ति है, भक्ति मय कार्य, जिस कार्य से यैर्य अंजसा रति, ताकि निष्काम प्रेम उत्पन्न हो भगवान के श्री चरणों में, ऐसा कार्य मनुष्य को करना चाहिए। किसी को आगे समझाते हुए जो नारद मुनि ने उपदेश सुनाया था उसी को प्रहलाद महाराज अपने मित्रों को सुना रहे हैं। गुरु शुश्रूषया भक्त्या सर्वलब्धार्पणेन च संगेन साधु भक्तानां ईश्वर आराधनेन च गुरु शुश्रूषया। गुरु का आश्रय लेना चाहिए, तस्मात् गुरुम प्रपद्येत शास्त्र का कहना। यू मस्ट एक्सेप्ट, गुरु का आश्रय लेना चाहिए, गुरु का स्वीकार करना चाहिए। भगवान भी जब अवतार लेते हैं उनको आवश्यकता नहीं होने पर भी भगवान गुरु का स्वीकार करते हैं। सांदीपानी मुनि बन जाते हैं गुरु कृष्ण और बलराम के, और अन्य अवतारों में भी भगवान ने यद यद आचरती श्रेष्ठ, भगवान एक आदर्श रखते हैं मनुष्यों के समक्ष, स्वयं ही गुरु अपनाते हैं। तो गुरु शुश्रूषया, और कैसी भक्ति करनी चाहिए, गुरु की भक्ति बताई। भक्त्या सर्वलब्ध अर्पणेन च, जो भी प्राप्त है हमारे पास साधन वो सब समर्पित करना चाहिए गुरु की सेवा में, और ये गुरु भगवान की सेवा में उसका उपयोग करते हैं। यह गुरु आपको सिखाएंगे, आपके पास मानस देह गेह जो किचु मोर अर्पिलो तुवा पदे नंद किशोर। हे नंद किशोर, मेरे पास जो भी, मेरा मान, मेरा तन, मेरा गेह घर, जो किचु किचु थोड़ा कुछ अधिक है, अर्पिलो तुवा पदे त्वदीय वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पये। हे भगवान तुभ्यमेव समर्पये। त्वदीय वस्तु गोविंद, ये सारी वस्तुएं किसकी है, तुम्हारी है, और मैं तुम्हें ये सारी की सारी अर्पित करता हूं, स्वीकार करो। तुभ्यम एव समर्पय, संगेन साधु भक्तानां। तो संग करना चाहिए, दो प्रकार के संग है इस संसार में, दो प्रकार के संग एसोसिएशन, एक है असत संग और दूसरा होता है सत संग। असत सत, असत संग सत संग, यह सत्संग हो रहा है जिस संग के मध्य में भगवान है, भगवान जिस संग का केंद्र है, विषय है, उसको हमें अपनाना चाहिए, ऐसा आदेश उपदेश यहां हो रहा है। असंग त्यागात यही वैष्णवाचार, और कोई वैष्णव बनना चाहता है, असत संग त्यागात, असत संग को त्यागना चाहिए, ये वैष्णव का ऐसा आचार है। साधु भक्तानां ईश्वर आराधनेन च, और आराधना करनी चाहिए साधु के संग में। जब हम आते हैं तो साधु हमें आराधना सिखाते हैं, ईश्वर आराधना सिखाते हैं, या पहले सिखाएंगे ईश्वर कौन है और कौन नहीं है ईश्वर, इस प्रकार का ज्ञान उपदेश देंगे शास्त्र के आधार से, अपने अपना मनोधर्म नहीं, आई थिंक, मुझे लगता है कि बात नहीं, शास्त्र की बात, नहीं तो मनोधर्म हुआ, मेरा विचार मेरा ख्याल नहीं चलता है धर्म के क्षेत्र में, भगवान के विचार, आचार्यों ने जो बातें समझाई है। श्रद्धया तत्कथायां च आदो श्रद्धा साधु संग भजन क्रिया, श्रद्धा से जब हम साधु के पास आते हैं तो साधु हमें भजन की क्रिया सिखाते, भजन क्रिया सिखाते, भक्ति की क्रिया सिखाएंगे। इस भक्ति को अपनाने से हम प्रभु को प्राप्त कर सकते हैं। तो क्या विधि? तत्कथायाम कीर्तन ही गुण कर्म नाम, भगवान का कीर्तन करना चाहिए। प्रहलाद महाराज यहां कह रहे हैं भगवान की कथा, तत्कथायाम कीर्तन ही, दो बातें बताए, उनकी कथा करनी चाहिए जो हम कर रहे हैं यहां भगवान की कथा, और कीर्तन करना चाहिए जो कीर्तन, इस कथा का भी कीर्तन संभव है। कथा को जब कोई कहता है वो कथा भी कीर्तन बन जाती है, श्रवणम कीर्तनम। तो सुखदेव गोस्वामी ने कीर्तन किया, वो तो कथा सुना रहे थे, उनके पास तो कोई वाद्य लेके बैठे नहीं थे, कोई संगीतमय, संगीतमय कथा भी आजकल चल रही है, तो वे तो गा ही रहे थे या भागवत को गा रहे थे, उसी को कीर्तन कहा है। तो भगवान की लीला का कीर्तन, भगवान के नामों का कीर्तन, वैसे कलयुग में इस नाम का आश्रय बताया है, कथा का आश्रय। कथा का आश्रय मतलब किसका आश्रय? किसका आश्रय? कथा का आश्रय मतलब, कथा का आश्रय मतलब किसका आश्रय? भगवान का आश्रय। भगवान के नाम का आश्रय मतलब किसका आश्रय? भगवान, भगवान का आश्रय, भगवान के नाम का आश्रय लेना चाहिए कलयुग में, कलयुग के लिए। नामाश्रय करी जतने तुम्ही ताकह आपना काजे, आदेश है, उपदेश है। नामाश्रय करी जतने तुम्ही, आप सब क्या करो, आप यह कथा भी प्राप्त कर रहे हो और हमारे श्रोता हर रोज यह कीर्तन भी प्राप्त कर रहे हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये जो कीर्तन का आश्रय आपको प्राप्त हो रहा है, यह कीर्तन प्राप्त हो रहा है, मतलब हरि ही प्राप्त हो रहे हैं, इसको संभाल के रखना, जतन जतन करना, जपून ठेवा, जतने तुम्ही, नामाश्रय करी जतने तुम्ही ताकह आपन काजे, और फिर कार्य करते रहो प्रभु का नाम लेते हुए। कलयुग में ये नाम का आश्रय पहली मुख्य बात है, साथ में कथा। आपने देखा होगा हमारे हरि कृष्ण भक्त विश्व भर में, वैसे ये जो अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत संघ के भक्त सुविख्यात है, हम जाने जाते हैं, हरे कृष्ण लोग, ये कौन है, ये हरे कृष्ण लोग है, हमको कहते हैं क्यों हरे कृष्ण लोग, ओ हरे कृष्ण पीपो विदेश में, क्योंकि जहां तहां हम लोग क्या करते रहते, कीर्तन करते रहते, फिर लंदन है, न्यूयॉर्क है, लॉस एंजलिस है, आप जितने बड़े छोटे कई नगरों के नाम जानते हो, सभी नगरों में अब क्या हो रहा है, कई ग्रामों में भी हरि कीर्तन हो रहा है, मृदंग बज रहे हैं, जो नामाचा घोष चंद्रभागेच्या वाळवंटा मध्ये व्हायचा, वो नाम घोष, वो जय घोष अब टोकियो में हो रहा है, वो नाम का घोष अब मास्को में हो रहा है, वो नाम का घोष अब टोरंटो में हो रहा है, डर्बन में हो रहा है, इस प्रकार के मृदंग बजते हैं और करताल बजते हैं, जहां तहां ये दृश्य, आप कभी विदेश जाओगे तो जरूर आपको हरे कृष्ण कीर्तन मंडली कहीं ना कहीं दिखाई देगी, सर्वत्र कीर्तन हो रहा है, हरे कृष्ण भक्तों द्वारा कीर्तन, और कीर्तन का यज्ञ हो रहा है, हरे कृष्णा। इससे भी और कोई मीठी बात है क्या संसार में, हाँ आए तो आप प्रस्तुत कीजिए। भगवान की भक्ति कोई शुष्क नहीं है, ड्राई लाइफ नो, बड़ा ज्यूसी है, रस है, आनंद है, म्यूजिक है, संगीत है, कला है, वाद्य है, नृत्य है। भगवान का धाम इसे भरा हुआ है। आप सभी सादर आमंत्रित हो, ऐसे जीवन को अपनाइए आप। ये पर्याय है हम सभी के समक्ष, ये भक्ति का जीवन। तो कृष्ण कीर्तन के साथ साथ जो मृदंग और वाद्य बजाते हुए हम लोग कीर्तन करते हैं, तो साथ में हम लोग जप भी कर सकते हो। आपने हमारे हरे कृष्ण भक्तों को देखा होगा, उनके हाथ में थैली होती है, देखा कभी? और कभी कभी वो इस प्रकार लटकाते भी है, ऐसे लटकाते हैं, तो कई लोग सोचते होंगे शायद कोई फ्रैक्चर हुआ क्या, क्या हुआ, बैंडेज वगैरह है। कभी कभी हमारे हाथ जब करते वक्त हिलाते भी, ये कांप रहा है, कुछ कष्ट है इसको, इस ट्रेवलिंग ना, कोई समस्या नहीं है। वैसे भाव में कभी भक्त हाथ को हिलाते होंगे, या कभी कभी प्रभुपाद ने एक समय कहा दिस इज अ गन, संसार में जो माया है, हरे कृष्ण 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 गोली चलाते रहते हैं महामंत्र की, आपकी रक्षा होगी। AK-47 लेके जाने की आवश्यकता नहीं है, आप हरि नाम के बम की वर्षा कर सकते हैं, उसमें कल्याण, कोई घायल होगा हरि नाम से, कोई घायल होगा तो कल्याण होगा उसका। तो माला लेके आप जब कर सकते हो, हम जानते हैं आप सभी बूढ़े नहीं हो, कई लोग सोए बूढ़ा बनने के बाद बूढ़ी माँ के लिए, नानी दादी के लिए, तो ये ठीक, हम तो जवान है या तो आप भी जब जो बूढ़े थे वो कहे होंगे कि जब हम, अब तो जवान है, बूढ़े होने पर लेंगे तो अब तो बूढ़े हो गए, अब क्या कहोगे, अगले जन्म में लेंगे, तो समय आ गया। वैसे कौमार आचरित प्राज्ञो, सभी के लिए, आप कुमार हो, युवक हो, वृद्धावस्था के हो, स्त्री पुरुष हो, नर नारी हो, सभी के लिए, देश विदेशी हो, हिंदू मुसलमान हो, ये सारे तो भौतिक बाहरी परिचय है, अंदर तो कौन है, अंदर है आत्मा, न तो आत्मा काला है न तो गोरा, न तो देशी है न तो विदेशी, न हिंदू है न मुसलमान, आत्मा के कल्याण के लिए प्रभु का नाम है। संसार भर में इस नाम को अपना रहे हैं, प्रहलाद महाराज के उपदेशों का पालन हो रहा है, कीर्तनई उनका श्रद्धया तत्कथायाम च कीर्तनई गुण कर्म नाम, ऐसे करते हुए, कीर्तन करते हुए, कथा करते हुए, तत्पादाम्बुज ध्यानात्, पादाम्बुरुह ध्यानात्, भगवान का ध्यान करना चाहिए। भगवान के ध्यान की यही विधि है, ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन, ये मंत्र मेडिटेशन। काफी सारा स्ट्रेस एंड स्ट्रेन चल रहा है, तनाव, कितना दबाव माइंड पर और हम पर, तो इससे में हम लोग पीसे जा रहे हैं। खींचे जा रहे हैं हम, दबाव में आए हैं हम, तो उससे कोई राहत, उससे कोई रिलीफ प्राप्त करना चाहता आश्रय है, नामाश्रय करी। तो आप जप कीजिए, प्रभु के नामों का उच्चारण कीजिए, ऐसी मालाएं आपको उपलब्ध होगी बाहर, कैसे जप करना वो सिखाएंगे आपको भक्त। भाग दौड़ बहुत हो गई, जिस भाग दौड़ से हम सुखी नहीं बने, अब बैठ जाओ, सिट डाउन, माला लो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अगर श्रद्धया श्रद्धापूर्वक ये पुकार है तो क्या भगवान दूर रहेंगे क्या? ऐसे कीर्तन करता जप करता भक्त से दूर रहेंगे भगवान? मतलब आप टेलीफोन ही कर रहे हो, जैसे बताया गया भगवान का टेलीफोन नंबर है, तो आपने पुकारा फिर प्रभु चले आएंगे, तुमने पुकारा और हम, तो आप पुकारिए, पुकार के देखिए भगवान आते हैं, आप अनुभव करोगे भगवान की उपस्थिति का, आप शांत बन जाओगे, शांत प्रवृत्ति के बन जाओगे, क्योंकि आपकी लिंक योग जप योग से भगवान के साथ आपकी जब संबंध स्थापित होगा तो शांताकारम जो है, शांताकारम भुजग शयनम पद्मनाभम सुरेशम, ऐसे भगवान है, शांता शांत आकार के भगवान है। उनका आकार कैसा है? शांत आकार, शांतता की, शांति की मूर्ति है भगवान। उनके साथ संबंध जोड़ो तो शांति, भगवान के पास कितनी सारी शांत है, शांति है, उसमें से कुछ दो बूंदे एक दो किलो आपको दे देंगे भगवान, उससे आपका काम बन जाएगा। शांति नहीं स्वामी जी, शांति नहीं है, कई लोग शांति है स्वामी, शांति नहीं है, तो शांति प्राप्ति का मार्ग यहां प्रह्लाद महाराज सिखा रहे हैं। हरि सर्वेषु भूतेषु भगवान अस्त ईश्वरः इति भूतानि मनसा कामैस्तैस्तै साधुमानैत। तो भगवान को और भगवान के भक्तों की भी आराधना यहां कही है, दोनों का सम्मान सभी जीवों का, क्योंकि भगवान के हैं सभी जीव, भगवान के हैं इसलिए उनका सम्मान। कोई व्यक्ति सम्माननीय क्यों बनता है? भगवान का है, भगवान का शरणागत है, इसलिए उनका सम्मान, और भक्तों के सम्मान में भगवान का सम्मान। सभी जीव से भगवान के हैं, भगवान के अंश है, हमारे भाई हैं, हम सारे एक परिवार के हैं। या कितने परिवार एकत्रित हुए हैं? आप कहोगे 200, 500, 1000, नहीं, एक परिवार। ये भी उतना कोई बड़ा परिवार नहीं है। कितने बड़े परिवार की बातें हैं? वसुधैव कुटुंबकम्। कुटुंब कितना बड़ा है हमारा? वसुधा। ये पृथ्वी जितनी बड़ी है, ये पृथ्वी पर जितने जीव है, केवल मनुष्य ही नहीं, सभी जीव, उन सब का मिलके जो परिवार है, उतना बड़ा हमारा परिवार है। कृष्ण भावना इस प्रकार हमको विशाल दृष्टि के बना देती है। और ऐसे विचार आते हैं जब हम सत्संग करते हैं, प्रह्लाद महाराज का संग करते हैं। वासुदेवे भगवती यया संलभते रतिम, प्रह्लाद महाराज कह रहे हैं, वासुदेवे भगवती, वासुदेव श्री कृष्ण, उनके श्री चरणों में रति प्राप्त करना ही कर्तव्य है। और ये सब उपदेश सुना ही रहे थे अपने मित्रों को, तो इतने प्रभावित हुए उनके मित्र। दैत्यः सर्वे श्रुत्वा तद अनुवर्णितम्, वैसे करने लगे। पहले खेलकूद में समय बिताते थे, अब प्रह्लाद महाराज के साथ सब समय क्या करने लगे? श्रवणम कीर्तनम, ये नवविधा भक्ति में तल्लीन हो गए सारे बालक। और ये सब बातें, और अब वो मान नहीं रहे थे। पहले थोड़ा प्रहलाद नहीं मानता था, लेकिन अभी सारे मिलके ये सारे स्टूडेंट्स ने यूनियन बना दिया, स्टूडेंट्स यूनियन। इसके लीडर कौन थे? प्रहलाद महाराज। सारे मिलके कीर्तन करते, नृत्य करते, क्या क्या भक्ति करते, आराधना करते भगवान की। तब जब ये नाम के तथा कथित आचार्य शंड मार्ग तो आचार्य नहीं थे, यहां आचार्य कौन बन गए? प्रहलाद महाराज, प्रहलाद आचार्य, प्रहलाद महाराज आचार्य बने। और शंड अमर्क ने देखा कि प्रहलाद महाराज के उपदेश अनुसार बुद्धि एकांत संस्थितम, उनके सारे विद्यार्थियों की बुद्धि अब स्थित हुई है भगवान में, और सब ध्यान लगा रहे हैं, कीर्तन कर रहे, सभी के हाथ में जपमाला है। और हिरण्यकशिपु की कोई जय नहीं कह रहा है, कुछ दिन पहले कहा था कुछ ने, अभी थोड़ा सीख गए हम। तो नृसिंहदेव भगवान की, वाह, तो स्थित हो गए भगवान में, स्थितोस्मि गत संदेह। मित्रों का कोई प्रश्न नहीं रहा, कोई शंकाएं नहीं रहे, सारे उनकी मति स्थिर हुई भगवान के चरणों में। और ये जब देखा आलक्ष्य शंडमर्क ने देखा, भीत डर गए वो, अत्वरितः वे राजा के महल की ओर दौड़े और सारा समाचार कह सुनाया। जब इस शंड और अमर्क ने श्रुत्वा सुन लिया और दुस्सहम वो सहन नहीं हुआ हिरण्यकश्यपु को, तनय आनयम, तनय अपने पुत्र, ए ले आओ प्रहलाद को बुलाओ। कोप आवेश, कोप क्रोध के आवेश में आए, क्रोधित हुए, क्रोधांध हुए, क्रोध से अंधा बन गया हिरण्यकश्यपु। और गात्रः, उसके सारे गात्र अंग में थर थर कांपने लगे क्रोध से, क्रोध के आवेश से। पुत्रम हन्तुम मनोदधे, अब उस बालक का वध करूंगा, ऐसा मन में विचार आए, संकल्प किया था। क्षिप्त्वा परुषया वाचा, तो बालक जब आया, प्रहलाद जब आया, डांटने फटकारना शुरू किया, गालियां बकना शुरू कर दिया। पापेन, पाप बुद्धि से, तिरछी नजर से, या भौवे टेढ़ी करके अपने पुत्र की ओर देख रहा था ये हिरण्यकश्यपु। किंतु प्रहलाद महाराज तो प्रश्रया अवनतम दांतम, वो तो शांत था और संतुलन, मन का निग्रह किया हुआ, दांतम बद्धांजलि हाथ जुड़ा हुआ प्रार्थना मुद्रा में अवस्थितम, सर्पः, और उसके बिल्कुल उपरीत विपरीत ये हिरण्यकश्यपु सर्प सर्प जैसा फुफकारता, स्वशन प्रकृति दारुणा, बड़ी दारुण उसकी वाणी और फुफकारना, जैसे सर्प जब वो डसने आता है पद के आहत करने से, उसको चोट जब लग जाती है, किसी का पैर लग गया तो झट से जैसे सर्प फुफकारने लगता है, वैसी स्थिति हुई है हिरण्यकश्यपु की। दुर्विनीत, हे दुर्बुद्धि, हिरण्यकश्यपु कह रहा, हे मंद, अधमा, हे अधम। वैसे प्रहलाद महाराज तो नरोत्तम थे, नरों में उत्तम, नरोत्तम, किंतु ये स्वयं ही दुर्बुद्धि वाला प्रहलाद महाराज को अधम कह के पुकार रहा है। स्तब्धम, तो मेरे शासन का उल्लंघन कर रहे हो। नेशे, आज पहुंचाऊंगा तुझे यमक्षयम, यमपुरी में तुमको प्रस्थान कराऊंगा तुम्हारा आज ही। क्रुद्धश्चयश्च कंपन्ते त्रयो लोका सहेश्वरः, ऐसा क्रोधित और कांपता हुआ ओ हिरण्यकश्यपु पूछ रहा है, तुम्हारे पास इतना सारा शांति, ये बुद्धि और ये बल कहां से आ रहा है, ये किसके बल के सहारे तुम ये धृष्टता दिखा रहे हो, मेरे शासन का उल्लंघन कर रहे हो। प्रह्लाद महाराज ने कहा, प्रह्लाद उवाच, न केवलम मे भवतस् राजन सवै बलम बलिना चा परेशाम। न केवल आपने पूछा कि मेरा बल कहां से आ रहा है, वैसे सारे बल के स्रोत मेरे भगवान है, मेरे ही बल के नहीं, तुम्हारे बल के स्रोत भी तो वही है। अड़चन समस्या ये है कि तुम भगवान ने दिए हुए बल का दुरुपयोग कर रहे हो, लेकिन तुम्हारा बल भी तो मेरे भगवान का दिया हुआ ही है। स ईश्वरः कालः, वो ईश्वर ही काल है सभी का, काल बन के भी प्रकट हो सकता है। उरुक्रमा, और साथ ही साथ वो महापराक्रमी है मेरे भगवान। ओजस्सह, ओजस्वी है, बलवान है, धैर्यवान है मेरे भगवान। स एव विश्वम परमः स्वशक्ति भी, विश्व की वे परम शक्ति है और अपने शक्ति से ही सृजति अवति अति, सृष्टि के कर्ता वही है, पालन करता वही है और विनाश करता भी वही। गुणत्रयेशः, तीन गुणों के स्वामी है मेरे प्रभु, इसीलिए हे पिताश्री कृपया जहि आसुरम भावम इमम, ये असुरी भाव को त्याग दीजिए। समम मनो धत्स्व संति विधि दिशा, अपने मन को स्थिर कीजिए, भगवान में लगाइए। रिते अजितात्मन, उस व्यक्ति के बिना जो कैसा है, अजितात्मन, जो अजितेंद्रिय है, जिसने जीती नहीं है अपनी इंद्रिया या मन भी, ऐसे वो इंद्रिया या वो मन ही उस व्यक्ति का सबसे बड़ा शत्रु है। मन जो वश में नहीं है, मन पर निग्रह नहीं है, स्वैराचारी मन है, ऐसा मन ही मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। तो ये उपदेश की बातें, लहान तुंडी मोटा घास, ऐसा समझा होगा, अरे मुझे उपदेश सुना रहे हो, तो हिरण्यकश्यप उठा, उत्पथे स्थितात, अपने आसन से उठा, और आगे बढ़ा। हिरण्यकश्यपु उवाच, और आगे कहता है हिरण्यकश्यपु, व्यक्तम त्वम अर्तु कामोसी, लगता है कि तुम बेटा तुम मरना चाहते हो, नहीं तो इस प्रकार की डींग तुम नहीं मारते। अभागी हो तुम, मद अन्य जगदीश्वर मुझे छोड़ के, मद अन्य मुझे छोड़ के और कोई ईश्वर है ऐसी तुम्हारी मान्यता हुई है, मंद भागी अभागी हो तुम। वासो यदि स सर्वत्र कस्मा स्तंभे न दृश्यते, और तुम सब समय कहते ही आते हो, अभी अपने मित्रों को उपदेश सुनाया, मेरे भगवान तो अंदर है बाहर है सर्वत्र है, ऐसा उपदेश सुनाते हो, कहा है तुम्हारा भगवान? और तुम्हारा भगवान अगर सर्वत्र है, कस्मात् स्तंभे न दृश्यते, ये सामने जो ये स्तंभ है खंबा है इसमें तुम्हारा भगवान क्यों नहीं है? सोहम विकथ मानस्य, और डिंग हांकने वाले दुर्बुद्धे प्रहलाद, शिरः काया धरामि ते, अब तुम्हारा सर धड़ से अलग कर लूंगा। गोपाए धरिस्त्वाद्यम, और मैं देखना चाहता हूं तुम्हारा हरि कैसी रक्षा करता है। अब एवं ऐसे वचन ये असुर महाअसुर असुर वर्य हिरण्यकश्यपु कहता हुआ दुर्वुक्तै, अच्छे वचन नहीं कठोर वचन, ऋषः पूरे क्रोध के साथ, क्रोध किसके ऊपर कर रहा है? सुतम महाभागवतम, अपना ही पुत्र, कैसा है पुत्र? महाभागवतम, महाभागवत है, महात्मा है, पवित्र आत्मा है, खड़गम प्रग्रह्यो उत्पतितो वरासनात, यहां पर वैसे बताया है पहले नहीं उठे थे मैंने, यहां पर अब पूरे उठ रहे हैं, उठे अपने आसन से, हाथ में हथियार लिया, तलवार ली है, और पहले पूछा स्तंभ में क्यों नहीं तुम्हारा भगवान, उस स्तंभ की ओर आगे बढ़े हैं। स्तंभम तताड़ अति बलः स्वमुष्ठिना, अपने मुष्टि से, एक हाथ में तलवार थी दूसरे हाथ में मुष्टि से, मुट्ठी से प्रहार किया उस स्तंभ पर, जब हिरण्यकश्यपु ने इस महाअसुर ने, तदैव तस्मिन् निनदो अति भीषणो, उस प्रहार के साथ एक निनाद, एक अति भीषण ध्वनि सभी ने, और अन्य इस समय अन्य पार्षद भी वहां एकत्रित हुए थे, तो हिरण्यकश्यपु ने वो ध्वनि सुनी, श्रुत्वा, उसको जब सुना तो अनुभव कर रहा था प्रलय, महाप्रलय का समय आ चुका है, विनाश का तो समय नहीं आया है। उस ध्वनि से, उस भीषण ध्वनि से, वो ध्वनि सारे ब्रह्मांड भर में, केवल वो महल ही नहीं भरा है उस ध्वनि से, उस ध्वनि की गर्जना सारे ब्रह्मांड को निशम्य निशम्य भयानक ध्वनि, अंत सभायाम न ददर्श तस्पदम, पहले तो हुआ गर्जना तो सुनाई दे रही, लेकिन कहां से आ रहा है आवाज, कहां से ध्वनि सुनाई दे रही है? तो कोई मंगल वाद्य भी बज रहे हैं, आकाश में देवता बजाते होंगे, अब उनको पता चला भगवान प्रकट होने जा रहे हैं। सत्यं विधातुं निजभृत्यभाषितं व्याप्तिं च भूतेषु अखिलेषु चात्मना। तो सत्यं विधातुं, पहले तो ध्वनि सुनाई दी, लेकिन ध्वनि उतना पता चला कि स्तंभ से ध्वनि आ रही है, तस्मिन् उस स्तंभ से ध्वनि आ रही है, लेकिन ध्वनि करता कौन है, कौन ध्वनि कर रहा है, आवाज कर रहा है? तो इतने में अदृश्यत अति अद्भुत रूपम उद्वहन स्तंभे सभायाम न मृगम न मानुषम। इतने में वो ध्वनि करने वाला, वो व्यक्तित्व प्रकट हुआ। व्याप्तिम, इतना विशाल उसका रूप था, और अद्भुत रूपम स्तंभे सभायाम, स्तंभ के उसी सभा के उसी स्तंभ से बाहर निकला। न मृगम न मानुषम, न तो मृग था मतलब पशु था, न तो पूरा मनुष्य था, कहां है बाहर आ रहा है? हाँ,
नरसिंहदेव भगवान की, नरसिंहदेव भगवान की। नरसिंहदेव भगवान की, प्रहलाद महाराज की।
विग्रह के रूप में भगवान यहां प्रकट हुए। न सत्वमेनम परितो पश्यन् स्तंभस्य मध्यात्, स्तंभ के मध्य से निकलकर भगवान बाहर आए। नायम रगो नापि नरो विचित्र विचित्र महो किन एतत्, हिरण्यकश्यपु देख रहा है, ध्यान पूर्वक देख रहा है, अरे अरे अहो कैसा विचित्र है ये रूप। हिरण्यकश्यपु ही नायम, ये नहीं है मृग, ये न तो पशु है न अभी नरः, ये मनुष्य भी नहीं है, बड़ा विचित्र रूप है, कोई मृगेंद्र है, कोई सिंह, सिंह का राजा, साथ में नर, आधा नर और आधा नरसिंह। तो मिमां समानस्य, इस प्रकार वो जानने का प्रयास कर ही रहा था ये हिरण्यकश्यपु, तो जो क्या क्या देखा उसने, प्रतप्त चामी कर चंडलोचनम, उसने तो देखा भगवान का बड़ा उग्र रूप था। इस उग्र रूप का दर्शन कीजिए, बड़े ध्यान से गौर से देखिए इस रूप को, अगर आप देखोगे इस रूप का दर्शन करोगे ध्यान पूर्वक श्रद्धा पूर्वक, तो भय आपको कभी छुएगा नहीं, आप निर्भय बनोगे। आपको निर्भय बनाने के लिए भगवान यहां प्रकट हुए हैं। वैसे असुर तो डरे हुए थे, कांप रहे थे, सारे भक्त शांत थे। तो अगर किसी का दिल कांप रहा है तो समझना चाहिए हम कुछ प्रवृत्ति है, या हिरण्यकश्यपु से कुछ हम कोई सगे सोयरे। प्रहलाद महाराज को भय नहीं था तो निर्भय। भजहु रे मन श्री नंद नंदन अभय चरणारविंद रे। तो हे मन भज ले, भगवान के श्री चरणों को भज ले, ध्यान कर ले हे मन इस प्रभु का, ताकि क्या होगा, अभय चरणारविंद। भगवान के चरण कैसे अभय दान देते हैं, अभय चरणारविंद, ऐसे चरणों का ध्यान। चरणों के पहले अब देखिए कैसा ध्यान है, ये बड़ा विस्तृत वर्णन है भगवान के रूप का। तो उनकी आंखें हैं जो पिघला हुआ सोना होता, तप्त कांचन, सोना जो तप्त है ऐसे सुनहरी और साथ ही साथ भयावनी डरावनी आंखें है नरसिंह भगवान की। स्फुरत सकाट कीशर, गर्दन गर्दन में देखिए, गर्दन में कई सारे बाल है। जमृत आननम, और भगवान का मुख कैसा है, खुला है, रेडी, हिरण्यकश्यपु के लिए तैयार है, भोजन बनाना चाहते हैं। वो खुला हुआ है, फैला हुआ है, कराल दंश्रम, और दांतों से युक्त है दांत नरसिंह भगवान के। चुरांत जीवम, तो मुख जब खुला है तो अंदर क्या है, जीवा है। कैसी जीवा है, मानो कोई तलवार है तैयार है काटने के लिए, लपलपाती हुई, और भ्रकुटी मुखोल बनम, और टेढ़ी भव्वे हैं भगवान की। जैसे हिरण्यकश्यपु देख रहा था अपने पुत्र की वो रही टेढ़ी नजर से, अब बारी किसकी है, भगवान की बारी। भगवान वैसे तिरछी नजर से, टेढ़ी नजर से, क्रोधित होके अपना क्रोध इस हिरण्यकश्यपु के ऊपर दिखा रहे थे। स्तब्धो ऊर्ध्व कर्णम कांते, अब मुख हुआ, दांत देखे आपने, जीभा देखी, और कान ऐसे ऐसे ऊर्ध हुआ, ऐसे खड़े थे मानो कोई गुफा का प्रवेश द्वार हो, हिल नहीं डुल नहीं रहा, स्तब्ध है। अनुभेद भीषणम, और पूरा दिवी स्पृशत, इतनी मोटी काया है भगवान की, मानो वो आकाश, स्काई इज अ लिमिट, आकाश के बादलों को छू रहा है वो रूप। ग्रीवा, भगवान की ग्रीवा है, गर्दन है, छोटा है, छोटी मोटी, हाँ मोटी नाटी, हाँ गर्दन छोटी है भगवान की, ये भगवान के रूप का वैशिष्ट है। वैसे भगवान का गर्दन छोटा है, विशाल, और वक्षस्थल विशाल है। भगवान की कमर पतली है, भगवान के हाथ है, और हाथ में नाखून है, नखायुधम, और माने मानो ये भगवान के बाहु नखों के साथ एक एक का सैनिकों की टुकड़ी है जो अब हमला करेगी वहां के उपस्थित हिरण्यकश्यपु के पार्षदों के ऊपर। दुरासदम तो जो भी ये रूप देख के ही ये भगवान के हाथ और नाखून वाले कई सारे असुर दौड़ रहे भाग रहे हैं। लेकिन ये हिरण्यकश्यपु तो भी अपनी धृष्टता साहस मूर्ख जो है शरण लेनी चाहिए थी ऐसे महाबली महापराक्रमी महावीर भगवान की। उल्टे उसने अपने हाथ में हथियार तो था ही, वो आगे बढ़ा है ऐसे भगवान के साथ युद्ध खेलना चाहता है। ऐसे पतिंगा अग्नि की ओर जाता है और अग्नि में प्रवेश करता है तो गया काम से फिर लौटता नहीं, उसी प्रकार नरसिंह ही ओ जसी। नरसिंह भगवान का जो प्रकाश है ज्योत है उसकी ओर ये पतिंगे के रूप में खींचा जा रहा है, आगे बढ़ा है। गदया बुरुवे गया अपनी गदा गदा के साथ आगे बढ़ा इस वक्त और भगवान के साथ युद्ध खेलना चाहता है। और ये खेल वैसा ही है यह वर्णन आया है, भगवान भी थोड़ा खेलना चाहते खिलवाड़ बन के उसके साथ, जैसे गरुड़ सांप के साथ खेले। गरुड़ तो ऐसे ही सर्प को उठा के, उसके लिए बाएं हाथ का खेल है सर्प को उठाना, लेकिन कभी कभी सर्प के साथ गरुड़ खेल करता है, कभी उसको छोड़ता है और सर्प जब दौड़ता है तो फिर पुनः उसको पकड़ता है, उसको जाने देता है, कभी कभी सर्प फुफकारता है तो गरुड़ उसके लिए हर्ष का विषय। तो भगवान भी, भगवान यहां गरुड़ है गरुड़ जैसे, और ये हिरण्यकश्यपु सर्प जैसा है जहरीला है, और द्वेष उसका वैसा ही है जैसे सर्प में ईर्ष्या होती है, तो सारा ये ईर्ष्या का प्रदर्शन भी है। तो कुछ समय ये खेल चलता रहा हिरण्यकश्यपु के साथ, और ये खेलते खेलते वैसे भगवान इसीलिए भी खेलते होंगे क्योंकि हिरण्यकश्यपु को जो वादा किया था ब्रह्मा ने, वचन दिए थे मुझे वचन दो मेरा दिन में मृत्यु नहीं हो रात में नहीं भी नहीं हो। तो अब दिन ढलने जा रहा था, कुछ क्षण बाकी थे, तो इसीलिए भी प्रभु खेल रहे उसके साथ ताकि वो बेला आ जाए जिस समय दिन भी नहीं है रात भी नहीं है, तो फिर अंत में वो समय आ चुका है। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, प्रभु उसको उठा के पहले महल में था, महल में वध नहीं कर सकते, मेरा वध कहां नहीं होना चाहिए, महल में अंदर नहीं होना चाहिए बाहर भी नहीं होना चाहिए। प्रभु ने उसको उठाया और जहां द्वार है दहली उसको कहते दहली प्रवेश द्वार पर गए, और जमीन पर मुझे नहीं किसी को मारना चाहिए तो भगवान ने उसको जमीन पर भी नहीं रखा है। हवान आकाश में भी मेरी मृत्यु नहीं हो, आकाश में भी नहीं है, उसको गोद में लिया है, किसी हथियार से नहीं, उन हथियारों में ये हिरण्यकश्यपु वैसे सोच रहा था, ओ ब्रह्मा ने मुझे अमर बनने का तो वर नहीं दिया, लेकिन ये सारे वर तो दे दिए, अंदर नहीं मरूंगा, बाहर नहीं, जमीन पर नहीं, आकाश में नहीं, इस हथियारों से नहीं, ये नहीं वो नहीं, ओ मैंने ठगाया, मैंने ठगाया, ब्रह्मा को ठगाया, ऐसा सोचा होगा। लेकिन अब ये ठग है तो भगवान अब महाठग बनेंगे। उसने तो नाखून का वगैरह नाम नहीं लिया था, वो नाखून से मैं नहीं मारा जाऊंगा, इसने कभी सोचा नहीं था। तो भगवान ने तब कर कमल वरे नखम, तब कर कमल, भगवान के अपने जो कर कमल है, ये जो कमल जैसे उन भगवान के हाथ है, उनमें लालिमा है, भगवान के हाथों में क्या होती है, लालिमा कमल जैसी, और कोमलता भी कमल जैसी, और आप अगर सूंघोगे भगवान के हाथ तो क्या होगा, उसमें सुगंध भी है, भगवान के हाथों में सुगंधित है, कोई पाउडर लगाए इसीलिए नहीं, स्वाभाविक भगवान का विग्रह सुगंधित है, सारे गंधों का स्रोत जो है, तैसे कर कमल, तब कर कमल वरी और नखम, उसमें नाखून तो चरण कमल, कर कमल और उंगलिया और नाखून से लीलया, लीला की भगवान ने, और क्या किया, फाड़ दिया, हरी बाओ, ओ हरी, हरी उसका आतड़ी वगैरह निकाल के भगवान ने उसको पहन लिया। अरे वीडियोग्राफर्स वगैरह दौड़ पड़े, फिर फोटोग्राफ खींच रहे भगवान का। स्वर्ग में जरूर सभी देवता यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुत सुनवंती दिव्य सवै स्तुति करने लगे भगवान की। अपने अपने विमानों में बैठ के वहां पधारे थे और वाद्य बजा रहे थे, हमारी मंडली तो थक गई, लेकिन देवतागण जब स्तुति का समय है वो थकते नहीं, सदैव तैयार तत्पर रहते, एवर रेडी। गंधर्व गा रहे थे, वाद्य बजा रहे थे, अप्सराएं नृत्य कर रही थी, फूलों की वृष्टि हो रही थी, वर कमल वरी नखा दलिता हिरण्य कशिपु तनु केशव सीता नर हरि रूप जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे।